So welcome to another episode of VoiceOver Par Charcha. In this very, very, very special episode, we have a legendary voice artist, a voice actor,
a voice coach.
I can say an award-winning voice actor, the winner of India Voice Fest 2019, 20, 21, 22.
And also 2023.
The voice of Jaggu Bandar, Squid Game, and last but not the least, the official Hindi voice of Harry Potter, and the list is too big. So to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have the one and only voice actor Rajesh Kawa on VoiceOver Par Charcha. So sir, aapka bahut 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 swagat hai VoiceOver Par Charcha mein.
थैंक यू सो मच. पहले तो हर्ष, इतनी तारीफ करने के लिए, बाकी मैं एक आम इंसान हूँ, कलाकार हूँ, दैट्स इट. बस
तारीफ क्या सर, मैं कम कर पाया, वो तो लिस्ट इतनी बड़ी है, मैं जितना शॉर्ट करके बता सकता था बता दिया मैंने.
थैंक यू सो मच मेरे भाई. पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपके इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए. देर आए दुरुस्त आए, कब से बातें चल रही थी, लेकिन हाँ आना तो था.
और सर एनीवे सर, आपका जैसे स्वागत दो तरीके से बनता है, एक तो हिंदी में होता, दूसरा मैं करना ही चाहूंगा सर वॉइस ओवर पर चर्चा में आपनो हार्दिक स्वागत.
थैंक यू मारा भाई. सवाल ज नथी કે આપણે ભેગા થઈને આવી શેવાત ન કરીએ, તો આજે આ મોકો મળ્યો છે તો શરૂઆત કરીએ.
બિલકુલ સર, બિલકુલ બિલકુલ. મતલબ મેં એક સૌભાગ્ય સર સે મેં દો તરીકે સે વાર્તાલાપ કરતા હું, હિન્દી મેં, ગુજરાતી મેં, ઓર આજ બહોત બડા સૌભાગ્ય. આજ મેં અલગ હી એક્સાઇટમેન્ટ હે સર, આજ અલગ હી લેવલ કે એક્સાઇટમેન્ટ હે. તો સર સબસે પહેલે regarding your voicing journey and everything, jitna main aapke bare mein janta hu, so I'll start from here. If I'm not wrong, aapki shuruaat gujarati theater se hui thi, right?
Correct.
Gujarati theater se acting se hui thi, fir ye voicing ka safar kaise shuru hua, over to you sir.
yes ye bahut interesting hai. Pehle to college mein inter college jo drama karte hain, to competition drama, wahan se commercial play, gujarati play, gujarati theater kafi rich hai. Mumbai mein kafi shows hote hain, kafi cheez hai. तो नाटक, गुजराती नाटक, फिर एक रैंडम कॉल कि डबिंग करेंगे आप, डबिंग आती है, तो डबिंग का डब ही पता नहीं था, तो उसके बारे में थोड़ी चीजें जान के, थोड़ा जल्दी पहुंच के, चीजें देखने के बाद पहला ही जो था ऑडिशन वो रिजेक्ट, सुपर फ्लॉप. तो वो जो था अलादीन के लिए ऑडिशन था वो, और वो एनिमेटेड सीरीज उसके लिए था, और गुजराती वर्षन,
गुजराती वर्षन. ओके,
तो तभी मैं गुजराती थिएटर करता था, गुजराती सीरियल सब कुछ करता था. तो जब रिजेक्ट हुआ ना, तो एक झटका लगा, मैं बोला ऐसे कैसे, अशक्य छे, એટલે આ મને કેમ આવડ્યું નહીં કે હું ક્યાં ખોટો ઉતર્યો, વૈસી વાલી ફીલિંગ
હે.
તો હા, તો ફિર સમજ માં આયા કે ની ટેકનિકલિટીઝ બહોત માયને રખતી, लैंग्वेज, एक्टिंग एंड मेनी मोर थिंग्स,
बहुत सारी चीजें.
तो उसके बाद छोटी 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 चीजें सीखना शुरू की गुजराती में, छोटे 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 डबिंग गुजराती में, बड़े डबिंग हिंदी में, क्राउड डबिंग, वो जो जय जय वहां से शुरू किया था, वो क्राउड करने जाता था. उसके बाद धीरे 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 किरदार. तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पहला काइंड ऑफ हीरो कैरेक्टर 2002 में एक सीरीज में मिला, बेब्लेड,
2002
पॉपुलर popular yes, show for Cartoon Network, I think. Cartoon
Network. Yes.
उसमें second lead मैं था, Ray. I was playing Ray. और same show में मैं play कर रहा था एक negative zone का villain जो था क्योया, वो भी मैं play कर रहा था. तो ये वाकई बड़ी बात होगी मेरे लिए. और उसके बाद तो बहुत सारे कार्टून, बहुत सारी सीरीज फॉर कार्टून नेटवर्क, हंगामा, निक, डिज्नी.
So finally sir, इसमें जैसे आपने कहा गुजराती एक्टिंग, फिर डबिंग से शुरू हुआ, फिर आपने धीरे धीरे जैसे हिंदी में भी अपनी पकड़ बनाई एक हिसाब से, और बहुत उम्दा तरीके से, क्योंकि मैं ये इस चीज को पर्सनली कोरिलेट कर सकता हूँ कि गुजराती स्पीकिंग फैमिली, गुजराती बैकग्राउंड थिएटर, उससे हिंदी में पकड़ पाना, इस मिलती जुलती लैंग्वेज है, बहुत अलग नहीं है, लेकिन फिर भी इतने फ्लो में आना, तो ये एक ऐसे ट्रांजिशन हुआ थोड़ा, और इसमें अगर
ये मैं बताऊं तो शुरुआत उसी से हुई कि पहले मैंने गुजराती डबिंग शुरू, ताकि वहां टेक्निकलिटीज सीख जाऊं, क्योंकि भाषा तो अपनी है, छोटी मोटी चीजें होंगी वो सीखता रहूंगा गुजराती में, लेकिन हाँ टेक्निकलिटीज में थोड़े हाथ आजमाए और चीजें समझी. लेकिन हाँ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ टेक्निकलिटीज, मतलब टेक्निकलिटीज तो एक तो चलिए कि हाथ में स्क्रिप्ट है, सामने वीडियो है, कान में हेडफोन है, सामने माइक है, परफॉर्म करना, ये बेसिक टेक्निकल. लेकिन इसको बहुत मतलब प्रो मैक्स वाली चीज आपको कैसे बताऊं मैं, कि मैं बात कर रहा हूं 98 की, तभी ये जो प्रो टूल्स न्यूएंडो वो नहीं था कि आप कहीं
नहीं
भी
सब
बोल
था,
डालो
ये सब
साउंड
कुछ नहीं था,
इंजीनियर साहब सिंक कर लेंगे, ये नहीं था।
नहीं था तब।
रॉक एंड रोल यानी कि सीधा प्रिंट जो होती है पट्टियां, वो टेप, उस पे टेक होता था, रिकॉर्ड होता था। मतलब उस सीन में जितने किरदार हैं, एक्टर हैं, वो सब साथ में है, पूरा
यस
सीन साथ में होता है। किसी ने, एक ने फंबल किया तो टिकेट फ्रॉम द टॉप,
पूरा रिटेक होगा।
क्योंकि फाइनल प्रिंट पे छप रहा है, वो सीधा हो रहा है
यस
प्रिंट।
ट्रू ट्रू ट्रू
उसके बाद आया लो बैंड, वो एक इतनी बड़ी कैसेट आती थी, उसके साथ वो लॉक करते थे, इन आउट सिंक होता। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं टेक्निकलिटीज की, उसमें सिर्फ दो ही
नहीं, मैं
ट्रैक होते
कोरिलेट
थे,
कर पा रहा हूं।
दो ही ट्रैक होते थे, और उसी में, और उसी एपिसोड में या उसी फिल्म के चार पांच उनको वो ऐसे कैसेट बनाने पड़ते थे, इसमें दो ट्रैक, उसमें दो ट्रैक, उसमें दो ट्रैक, 6-8 ट्रैक बना के सारे आर्टिस्ट डब करा के फिर वो लोग मिक्स करते थे। तो वो लो बैंड, उसके बाद हाई बैंड, उसके
हाय
बाद
बहन,
हाई हाई 8, इतनी एक कैसेट आती थी, उसमें 8 ट्रैक थे, ऑडियो कैसेट, जैसी कैसेट, वो लॉक होता था, लिंक होता था बीटा कैसेट के साथ। तो वो भी एक बहुत ही भयंकर चीज थी, बहुत ही, उसमें साउंड इंजीनियर जो होते हैं बहुत ही मजेदार चाहिए होते थे, क्योंकि उसमें सटक
हाँ
सटक इन ऐसे दबाना पड़ता था, ऐसे आउट, अगर
हाँ
आउट दबाने में लेट हो गया तो किसी और का लाइन जो उसमें है वो कट जाएगा।
वो कट जाएगा।
एक ऊपर बीजू रिकॉर्ड था यश है
करेक्ट
सिद्धू,
करेक्ट करेक्ट
तो वो हाई बैंड। हाई बैंड के बाद आया भाई न्यूएंडो, प्रो टूल्स, और ये प्रकार प्रकार की ये चीजें, टेक्निकलिटी सीखता रहा उसके साथ। मुझे पहला हिंदी एपिसोड, एक सिंगल एपिसोड मिला था कैरेक्टर के तौर पे, वो था, शो था निक का शो था, निकलोडियन का, कीनन एंड केल नाम का शो था। उसमें एक सिंगल एपिसोड में एक किरदार आता है, वो किरदार के लिए मुझे बुलाया गया था, पहला हिंदी मेरा, और
द
वो
मैन ऑफ
सिंगल
द ईयर वो
एपिसोड
कौन सा था? साल
2001 होगा, वो
2001।
वन के आसपास, या
ओके ओके
क्योंकि 2 में जो पहला मुझे मिल गया था वो बड़ा शो बेबलेड 2 में मिला था, तो ये 2001 के आसपास। तो 2001 में ये जो किया, और मुझे ये बुलाया था अनीता जी ने, अनीता डिकॉस्टा, बहुत ही उम्दा इंसान, उम्दा डायरेक्टर। तो उसके बाद मैं बेबलेड मैंने किया हीरो या विलन, लेकिन उसके बाद मैं जो भी हिंदी काम करता था, मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने काफी सिखाया, बहुत, काफी अलग 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 डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, कई लोगों ने सिखाया। अरे नहीं राजू ऐसे नहीं, राजेश अरे कावा ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है ऐसे। तो क्योंकि परफॉर्मेंस में एक तरह से देखा जाए तो पकड़ आ गई,
यस
क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड अपना थिएटर, और साथ ही इंटर कॉलेज कंपटीशन के 3 साल और कमर्शियल थिएटर, तो एक्सपेरिमेंट करने का एक स्वभाव, प्रकार प्रकार की चीजों को कुरेद कर देखने का, खाने का हर किरदार को, तो इस हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मर के तौर पर मैं थोड़ा ठीक ठाक, मतलब देखा जाए तो उसमें भी मैंने अपने आप को मानने संवारने की कोशिश की सालों तक, आज भी कर रहा हूं, लेकिन हाँ तो परफॉर्मर ठीक था, इसलिए डायरेक्टर, हाँ अरे लैंग्वेज चल ठीक है वो कर लेंगे,
कर लेंगे।
तो करा लेंगे करा लेंगे, तो कहीं कहीं, बाकी मैं पूरी कोशिश करता था कि सही हूं। तो हर भाषा की अपनी होती है, जो होती है छाप होती है,
ट्रू
जैसे
ट्रू
मराठी, पंजाबी, साउथ इंडियन, बंगाली, गुजराती, सबकी होती है। तो वो है, अगर हिंदी में उसकी झलक आ रही है तो आपको वो समझ होनी चाहिए कि कभी लानी है वो झलक, कभी नहीं लानी है।
अभी
अगर
नहीं लानी।
डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर्स डिमांड है, अगर वो किरदार आपका डिमांड कर रहा है तो लानी है। कौन सी, अच्छा गुजराती करो, अच्छा उसमें मराठी एक्सेंट चाहिए, अच्छा साउथ इंडियन एक्सेंट चाहिए, तो ठीक, लेकिन ऐसे साफ हिंदी आपकी होनी चाहिए
साफ
वॉइस एक्टर
हिंदी
के।
बिल्कुल से, मतलब जैसे ये रीजनल टच है, मतलब एक समझ होनी चाहिए। अगर अगर हिंदी है, अगर कोई जैसे साउथ इंडियन हिंदी बोल रहा है, गुजराती हिंदी बोल रहा है, तो
जी
वो वहां पे तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए,
हाँ, कब स्विच
चाहिए
कर दूँ।
आपको, चाहिए कौन सा, चाहिए ये नहीं चाहिए ये, अच्छा वो चाहिए, बंगाली मिक्स हिंदी, ओके मैं, आप कि वो
किरदार
तैयारी
में आना उसको होना चाहिए। और बाकी सर कमिंग ऑन द डबिंग एंड द एक्टिंग प्रोसेस, अब आपके तो सर फैमिली में ही एक हिसाब से पूरा यू नो पावर हाउस ऑफ टैलेंट, मतलब आपके बड़े भाई हो गए, इवन योर वाइफ ऑल्सो, आपकी तो मैं जिक्र करना चाहूंगा अपने एपिसोड में, आपकी 6 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6-7 years डॉटर यू हैव, एंड उनका
हाँ
भी
वो 6 में पढ़ती हैं, वो हैं 11 साल की बेटी
11 साल की,
मेरी।
11 साल की, ओके सॉरी 11 साल, और उनका भी कोई शायद शो बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फीवर में शायद, आप उसका अगर थोड़ा जिक्र कर सकते हैं, फीवर 104।
हाँ हाँ मेरी बेटी तभी मेरे ख्याल से छोटी थी, 5 साल की होगी जब
तब
वो,
उस टाइम पे, ओके
हाँ वो पहला शो उनका ऑडियो का पहला काम, हालांकि वो उससे भी छोटी थी तभी एक ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए उन्होंने डब कर लिया था, शायद 2.5-3 साल की
ढाई तीन
तभी।
साल में
हाँ जब वो तोतला सा बोल देते हैं वो वाला, तो ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए उसमें एक छोटा सा बच्चा था, उसके लिए कुछ 3-4 एपिसोड की डिमांड थी तो वो उसमें किया था। लेकिन हाँ वॉइस एक्टर के तौर पे मेरी बेटी वेनेसा का पहला काम जो वो फीवर 104 FM HT मीडिया का, और शो बजरंगी,
बजरंगी,
जय
यस,
बजरंगी या बजरंगी ऐसा नाम भूल गया
उसमें
सॉरी
शायद
मैं
सुनील शेट्टी इफ आई एम नॉट
तो।
रॉन्ग,
हाँ तो उसमें बजरंगी मतलब हनुमान जी का किरदार प्ले कर रहे थे सुनील शेट्टी सर, तो उसमें डेफिनेटली हनुमान जी हैं, तो वो रामायण मतलब राम लक्ष्मण भी किरदार सब जुड़े थे। उस शो में मैं राम प्ले कर रहा था,
ओके
ऑडियो के लिए हो रहा
यस
था, और उसमें एक ऐसा कुछ एक सीन था जिसमें बाल राम मतलब छोटे राम दिखाया गया, तो उसके लिए वेनेसा को कास्ट किया गया था, और सुनील
परफेक्ट,
शेट्टी ने खुद साथ में उन्होंने रिकॉर्ड किया, सुनील शेट्टी ने गोद में बिठाया और
ओह
रिकॉर्ड किया था,
लवली लवली,
तो वो कमाल था वो सीन। तो उसके बाद
बढ़िया,
काफी किया उन्होंने, नेटफ्लिक्स के काफी शोज किए, काफी फिल्में की, थिएटर रिलीज फिल्म की उन्होंने काफी, 2-3 फिल्में की, पेट पेट 2 जो थी शायद वो भी की, टॉय स्टोरी भी की थी, और अभी कुछ एक अच्छा शो है बिंग नाम का शो वो भी कर रही है, तो चुनिंदा काम वो भी कर।
बड़ी बात है सर इतनी कम उम्र में, और साथ में ऑफ कोर्स आई कैन से जेनेटिक एक अलग बात है, जीन फिर तो चीज आई है, बट अपनी अब मेहनत है और इतने इस तरह से शोज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर कम उम्र में।
यस यस वो बहुत अलग ही किस्म के आर्टिस्ट है, वो मेहनती है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत काम किया जब घर पे होम सेटअप से, तो नेटफ्लिक्स की एक फिल्म थी फादरहुड, केविन हार्ट उसमें है, तो फादरहुड पापा केविन हार्ट और बेटी एक एक्ट्रेस, जो तो बेटी को डब किया मेरी बच्ची ने, मेरी बेटी ने,
ओके नाइस नाइस,
और पापा को डब किया था साहिल वैद ने जो एक्टर भी है और अच्छा आर्टिस्ट है ना, तो वो घर से किया था लॉकडाउन नेटफ्लिक्स के लिए, तो मैं जब डब करवा रहा था मेरी बेटी से केविन, वो केविन हार्ट वाली फिल्म फादर हो, माइंड ब्लोइंग सीन थे एक्टिंग वाले, तो मैं बोलता था तो उनको रेप्लिका मतलब कॉपी करना है, सीधा बोलना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता पापा मुझे माँ के पास जाना है, तो वो उनका कुछ इंटोनेशन अलग होता था, कॉपी हर बार नहीं करती, नहीं मुझे हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता पापा मुझे माँ के पास जाना है, उनका थोड़ा अलग कुछ होता था जो अपने
अपना एक
सीरियस,
अंदाज, अपना एक जो कह
तो
सकते हैं
वो
अपना
कमाल
एक
एक वो एक इनबिल्ट वो क्वालिटी उनकी कलाकार वाली वो काम कर जाती।
एंड सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स योर वाइफ इज आल्सो इनटू एक्टिंग, गुजराती थिएटर, मैंने काफी
यस
जैसे
यस
देख,
हाँ उन्होंने काफी गुजराती प्लेस किए हैं, गुजराती सीरियल उन्होंने की, हिंदी सीरियल वो बालवीर जो एक बड़ी फ्रेंचाइजी है सब टीवी का शो,
सब
तो
टीवी,
उसमें बालवीर में आर पार परी वो थी, और ये लास्ट जो सीजन गया 3rd सीजन उसमें बालवीर की भाभी वो थी,
यस
और
यस,
बालवीर काफी कर चुकी हूँ, और उसके अलावा भी काफी शोज किए उन्होंने अलग
अभी
अलग
कोई
चैनल।
कुछ नया भी आ रहा है दिसंबर नाम से, आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अभी अभी एक दो
हाँ
दिन
थर्टी
पहले,
फर्स्ट
हाँ
दिसंबर उनकी
हाँ थर्टी
गुजराती
फर्स्ट
फिल्म
दिसंबर
रिलीज हो रही है, उनकी पहली फिल्म
हाँ
गुजराती
हाँ
फिल्म, जो अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जनवरी फरवरी के आसपास रिलीज
मैंने
होगी,
कुछ
जियो
प्रोमो
जियो
पोस्टर देखा था इंस्टाग्राम में, देखा था मैंने,
हाँ संजय गोरडिया है और बाकी काफी कलाकार हैं, और वो शायद जियो जियो सिनेमा रिलीज कर रहे हैं।
तो सर मेरी तरफ से अभी से ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट उसके लिए, तो जरूर आप
थैंक यू
कन्वे
भाई,
करिएगा।
थैंक यू भाई, पता
तो सर मैं इसके अलावा, मैं आपको इतने टाइम से जैसे फॉलो करो, तो आपके मेरे हिसाब से गले में ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा यंत्र लगा हुआ है, आप इतनी तरह तरह की आवाजें, और थोड़ा आप इस, आपको इस पॉडकास्ट में कैसा फील हो रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स अगर आप थोड़ा बता सकते हैं, इतनी मॉड्यूलेशन मैंने बहुत रेयरली देखने को मिलती है, मतलब होता है ना जैसे आपके आवाज में एक तरह का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो आप अलग अलग जो मतलब जानवरों की, कीड़ों मकौड़ों की, और ये मतलब अलग ही रेंज है इस चीज की।
हाँ मतलब जब शुरुआत हुई थी, जब हम डब कर रहे थे, तब ओरिजिनल शोज नहीं थे. ओरिजिनल मतलब ये अभी छोटा भीम, मोटू पतलू, गट्टू बट्टू, है ना, ये सारे जो शोज हैं अभी, सिंघम, लिटिल सिंह, जो इंडियन एनिमेशन, वो नहीं थे.
मतलब वो
मैं बात
लिपसिंग के
कर रहा
साथ
हूँ,
नहीं होते, ये वॉइस एक्टिंग के साथ होते, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग?
हाँ, वॉइस एक्टिंग के साथ
वॉइस
होता
के
है.
साथ
पहले
होता है,
ऑडियो
बिल्कुल
रिकॉर्ड होता है, उसमें से एनिमेशन बनता है.
एनिमेशन बनता है. यस
तो
यस यस,
हमने शुरू किया था, अभी वो नहीं था.
तब वो नहीं
तो
था.
हमने ज्यादातर डब किया कार्टून नेटवर्क, पोगो, हंगामा, डिज्नी, जो भी चैनल थे, सबके लिए. तो क्या डब किया हमने, सब अमेरिकन शो, यूरोपियन शो, वर्ल्ड वाइड चाइनीज, जापानीज शो, वो सब डब किए. वो बाप कलाकार, वॉइस एक्टर्स एंड एक्ट्रेस काफी वक्त देते हैं, एक शो, एक सीजन को बहुत वक्त देते हैं, इत्मीनान से काम करते हैं. उस लेवल का काम जो हमने सुना है, मैंने जो डब किया, मैंने 2001-2 के आसपास से हिंदी काम शुरू किया, गुजराती 99 से कर दिया था. तो जितना हिंदी सुना, इंग्लिश जो सुना, और जापानीज सुना, कोरियन सुना, उस लेवल का वो सब सुना है मेरे भाई हर्ष, वो परफॉर्मेंस. तो मैं सोचता था कि जीवन में ये मास्टर है, ये इंग्लिश है तो ये मास्टर, ये जापानीज है मास्टर, मास्टर
मास्टर है.
लैंग्वेज, उसके बाद वो लैंग्वेजेस होते. तो मैं सोचता था जीवन में हम कब मास्टर कर लें, मास्टर लैंग्वेज करें, और जब करेंगे तो मैं ऐसी करूंगा कि मुझे फॉलो करना या कॉपी करना भारी पड़ जाएगा.
यस.
तो ये सोचा था मैंने, और ये काइंड ऑफ एक पागलपन कलाकार का, या बदला कि सालों से ये मुझ पे हमला कर रहे, मैं भी किसी पे हमला करूंगा, वो वाली फीलिंग. तो जब फिर आए ऐसे किरदार, आए ऐसे कुछ शोज और बाकी, तो मैं ऐसे डिजाइन करता हूँ कि उसको जल्दी से पकड़ना या कॉपी करना, फॉलो करना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल. एक तो इतने सारे शोज कर करके हमने, मैंने जो पायलट में है, पायलट मतलब अगर जो लोग नहीं जानते इस क्राफ्ट को, तो मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है, फिर चाहे कोई भी प्रादेशिक भाषा हो, इंग्लिश, हिंदी, जापानीज, जो, तो वो पायलट में जो आवाज है, जो स्टाइल है, उसको हम पकड़ लेते हैं. मैं पूरी तरह से कॉपी करता था, काइंड ऑफ मिमिक्री वाली
मिमिक्री हो
चीज,
गया, मिमिक्री हो गया.
या रेप्लिका बना देता. और मैं ना कॉलेज में, इंटर कॉलेज स्कूल में भी मिमिक्री करता था. मतलब वो दोस्त लोग पकड़ लेते थे, ये कवा कवा कवा, आज नाना पाटेकर संभाव ने, ये आले खादी के चंद पुतले, हम दादी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पर छपी हो. ये रोज का था ये सब कुछ.
सुपर.
तो हाँ, आज ये, आज सैफ अली खान, आज वो, आज वो, तो आज ओम प्रकाश, आज ये, तो वो होता रहता, जगदीप, सब पुराने कलाकार. तो मिमिक्री मिमिक्री चलती ही थी. तो मतलब कॉपी करने वाली, उठाने वाली सब में से अच्छी चीज वो कला थी. तो इतने सारे आवाज, आपने कहा इतनी सारी जो आप आवाज निकालते हैं, वो एक्चुअली इतने सारे इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, कोरियन तो नहीं आते थे तभी, जापानीज इंग्लिश और चाइनीज, चाइनीज और बाकी ये जो शोज, उनसे ही सीखा, उनसे उठाया. कौन सी बैक थ्रोट, ऊपर वाली आवाज है पतली, ए आ, मतलब ऐसे ओल्ड कैरेक्टर डिजाइन किया है, ऐसा लगेगा ये अभी गया, ये इसकी आखिरी लाइन होगी, ऐसा करके करके बहुत ही प्रकार प्रकार की चीजें की हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं. तो वो फायदा मिल रहा है, मतलब
लिटरली
जब
गूंज रही है
जब
आवाज, होता
हम,
है ना हेडफोन में.
हाँ जब मौका मिला ये सारे ओरिजिनल शोज करने का, तो मैं एक आध दो का नाम ले सकता हूँ, जैसे गुरु और भोले नाम का शो, सोनी का, सोनी ये कार्टून, उसमें वो थोड़ा वो कॉन्सेप्ट, गुरु और भोले पड़ोसन फिल्म की, वो गाना गाता है, एक भोला है, एक गाना सिंगर गाता है, वैसा सब कुछ है. तो उस शो में ना गुरु दिखा ना भोले दिखा, उसमें एक विलन था जो नटखट था, माइकालाल जयकिशन उसका नाम था, एमजे,
एमजे.
वो दिखा. क्यों? क्योंकि वो मैंने ऐसा प्ले किया कि वही दिखेगा. मैंने जब ऑडिशन हुआ, मेरी नॉर्मल वॉइस में अप्रूवल आ गया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं, वो क्योंकि ऑडिशन के टाइम पे मेरी आवाज सिलेक्ट होगी, और हर लाइन के आगे पीछे वो एमजे वाला वो था, ठीक है, वो करके मैंने कर दिया, तो ऑडिशन अप्रूव आ गया, सब हो गया. और भी कुछ आर्टिस्ट ने दी थी आवाज, लेकिन मेरा अप्रूव हुआ, चलो. लेकिन जहां खुराफाती दिमाग होता है, वहां तो फिर वापस कि यार और क्या कर सकता हूँ उस किरदार में. तो 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया, अनीता जी का ही शो था, वो अनीता जी को फोन किया, मैंने बोला कि इसमें कुछ एक सूझ रही है चीज, बोला कि क्या, मैं बोला कि उनको चैनल वालों को बुलाओ, मीटिंग करते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि ये ना एनिमेशन बनेगा बराबर, तो हम कुछ और बेहतर क्या करें, तो मैं थोड़ी बहुत बीट बॉक्सिंग कर लेता हूँ, तो हर लाइन के आगे या पीछे कहीं कुछ डालता हूँ, तो मैंने ऐसे उसको बना दिया, गुरु और भोले को मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा बेसुरा गाऊंगा, सुरताल नगर के कान फाड़ दूंगा। तो आप सोच सकते हैं हर्ष उनको क्या क्या
यस
बनाने का मौका मिला, एनिमेटर्स को, वो
यस
डांस कर रहा है, मून वॉक कर रहा है, एवरीथिंग। तो उनके जो सोच के दरवाजे शायद बंद होते हैं वो भी खुल जाते
सर, एक सवाल करूं मैं?
हैं।
सर आपने हिंदी में तो कर लिया, लेकिन जो
तो
बाकी लैंग्वेजेस वाले उन्होंने कैसे इसको पकड़ा होगा?
तमिल तेलुगु, एक तो साउथ में साउथ की लैंग्वेज तमिल तेलुगु होती ही है, इंडिया
होती
की
है। यस यस
एनिमेशन,
यस यस यस
तो वो तो गाली देते होंगे, पता नहीं है। मैंने मैंने सुना है जहां तक कि वो उनको बीट बॉक्सिंग नहीं आती तो वो पूछा 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 ऐसा कर डाला होगा,
लेकिन
हाँ पूछा हाँ पूछा, हाँ। तो वैसा है, क्योंकि मेरा
सर
जग्गू बंदर भी जो सालों से चल रहा है, छोटा भीम का जग्गू मंकी, वो भी ऐसी चित्र विचित्र चीजों के साथ वो साइन किया गया है, उसको बनाया हुआ ऐसा है, तो उसको भी पकड़ना मुश्किल है। तो वो उसको भी कैसे करते होंगे तमिल तेलुगु, वो वाकई सोचने वाली बात।
सही में सर, क्योंकि बीट बॉक्सिंग और वॉइसिंग ये बहुत एक रेयर चीज है, जो शायद मुझे मुझे ही लगता है मैंने आज तक ऐसे कभी देखा होगा कि बीट
हाँ
बॉक्सिंग और
ये
वॉइसिंग
इंडिया
दोनों
का,
पहला
हाँ इंडिया का ये पहला किरदार था,
पहला ही कह सकते हैं सर।
पहला ही, उसके बाद दूसरा अभी तक हुआ भी नहीं है, मैंने किया है, तो ये
सही है
मजा
सर।
है।
सर इसके अलावा मैं अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली, मुझे याद भी है आज मैंने इंस्टाग्राम में जैसे मैं स्टोरी वगैरह फॉलो करता रहता हूँ, तो मुकेश सर जो आपके बड़े भाई हैं,
हाँ
आपने उनसे
हाँ
काफी कुछ सीखा, और उनका भी कोई कुछ अभी एक कार्टून कुछ अभी अभी स्टोरी में डाला है शायद, मैंने अभी आज
हाँ
के देखा था।
हाँ वो एक उन्होंने हॉटस्टार के लिए एक फिल्म की थी, वैलिटी या वालिडी ऐसा कुछ नाम है, तो उसमें वो सारे जानवर हैं, तो वो डॉगी उन्होंने किया है, और वो पहले ट्रांसलेट करते थे, बात कर रहा हूँ 97 98 98,
97 98
तो ट्रांसलेशन करते थे फ्रॉम दिस लैंग्वेज टू दिस लैंग्वेज, ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट वो करते करते फिर वो डबिंग में निकले, डबिंग में घुसे थोड़े थोड़े थोड़े, फिर मैं घुसा, पहले एक्चुअली एक्टिंग में मैं आया, मेरे पीछे एक्टिंग में वो आए, थिएटर में डबिंग में
ओके
वो आए, उसके उनके पीछे मैं आया, और
ओके
उन्होंने फिर वो टेलीविजन सीरियल जो है स्टार प्लस सोनी जी कलर्स जो भी डेली सोप वाले शोज, उनके लिए उसमें जो किरदार आते हैं एपिसोडिक किरदार, डॉक्टर पुलिस लॉयर काइंड ऑफ, या फिर रिकैप्री कैप, तो उनकी वो मोनोपोली है, उनके लिए वो सालों से डब करते हैं, तो इसलिए ही वॉज नॉट वेरी मच इंटू इंग्लिश टू हिंदी फिल्म ऑन हॉलीवुड फिल्म नेटफ्लिक्स, और वो नहीं करते थे सालों से, लेकिन कभी कभी कोई कोई फिल्म की है उन्होंने
फिल्म किया
काफी मत,
होगा।
तो वो उनसे काफी सीखा है मैंने। तो ये शुरुआत हुई थी जब 1998 गुजराती हमने काफी काम किया है, तो मैंने काफी सीखा है, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट है मेरे भाई, और यही चीज उनसे सीखी है कि हर तरह से मतलब परफेक्ट कैसे कर किया जा सकता
वॉइसिंग में यस
है। या
बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग्स होती रहती है मैं देखता रहता हूँ, ये
जी
कितनी
हाँ
फ्रिक्वेंटली होती है, जैसे आप मुंबई में भी होती है, मुंबई के बाहर भी होती है, ये कितनी
जी,
फ्रिक्वेंटली होती है, थोड़ा आप इसके बारे में मतलब बता सकते हैं, ड्यूरेशन कितनी होती है कि आपका अप्रोच
बेशक
होता है?
मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग मेरे ख्याल से 2018 से शुरू किया, तो 5 साल हो चुके हैं,
अच्छा
25 22 बैच बोरीवली वेस्ट वायलट विंग्स वॉइस एकेडमी, 5 बैच अंधेरी मयूखी के साथ, यानी कि जो अंजू जी पिंकी जी का जो स्टूडियो है उनके साथ मैं जुड़ा था, तो 5 बैच वहां, 22 यहाँ, और मोर देन 20 वर्कशॉप पैन इंडिया, जिसमें हर शहर आ गया, काफी बड़े शहर मतलब दिल्ली कोलकाता अहमदाबाद सूरत नागपुर पटना लखनऊ, शायद मैं कोई शहर भूल भी रहा हूँ अगर,
और
तो
भी काफी होंगे,
हाँ
कोलकाता शायद अभी हाल ही में हुआ था, मैं शायद फोन
कोलकाता
अभी
हुआ, हाँ
हाल ही हुआ था।
कोलकाता, तो पैन इंडिया और भी काफी शहर लाइनअप, तो कोशिश यही है, क्योंकि मुंबई में मेरा फुल कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है जो
दस
मैं
दिन का होता
डिजाइन
है
किया मैंने, तो काफी अलग अलग शहरों से राज्य से आते हैं लोग, यहाँ आते हैं सीख के जाते हैं, कुछ लोग यहाँ ठहर जाते हैं। तो मुझे गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं आज की तारीख में मुंबई में। तो ये बड़ा रेशियो है किसी अकेडमी के लिए जो मेरा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा इतनी हद तक कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ डबिंग कर रहा हूँ सुबह 11 से 2, लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद उसी प्रोजेक्ट उसी डायरेक्टर के साथ कोई मेरा स्टूडेंट काम कर रहा है,
स्टूडेंट काम कर रहा है।
तो ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाली बात होती है,
बहुत बढ़िया बात है सर।
तो कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो मैं शहरों में करता हूँ पैन इंडिया, वो 2 दिन के ही वर्कशॉप होता है, फुल कोर्स मुमकिन नहीं होता। तो 2 दिन में 1 दिन थियोरी, दूसरे दिन प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल स्टूडियो सेशन।
तो एक ये जस्ट है, एक झलक है ये, क्योंकि ये क्राफ्ट 2 दिन में नामुमकिन है, लेकिन हाँ ये उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका होता है जो मुंबई नहीं आ सकते। मुंबई महंगा शहर है,
ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स।
उसके लिए पैसे चाहिए। मैं जो बोलता हूँ कड़वा सच बोलता हूँ, मैं पिछले 2015 के बाद से मैं सीधी सारी बातें मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करना और यहाँ गुड़ आपने कहे ना कौन गोड़ चेट कार्ड ये नथियावाड़ू भाई, तो जो है बोल देता हूँ मैं। तो या तो पैसे नहीं है लोगों के पास मुंबई आने के लिए, पैसे चाहिए
ऑफ कोर्स,
या तो परमिशन नहीं है घर से फैमिली से, परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रकार प्रकार के कामों में उलझे हैं, 100 चीजें चल रही है जीवन में, तो बहुत मुश्किल है। तो जो आते हैं वो वाकई आते हैं, और जो मैडनेस के साथ आते हैं सीख कर जाते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उनके लिए मैं उनके शहरों में जाता हूँ, कोशिश
करता हूं। जाते हैं।
तो ये एक अच्छा अनुभव है, मजा आता है।
नहीं, अच्छी भी चीज है सर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ऑफकोर्स वॉइस ओवर, ये तो अब एक ग्लोबल चीज हो गई है कि जहां से रिक्वायरमेंट आप ऑनलाइन अपना घर पे जैसे सेटअप करके काम कर सकते हो। तो आप अगर उनके शहरों में जाके उनको शिकार है, नो डाउट डबिंग में लिमिटेशन है, डबिंग में अगर बड़े स्तर पे काम करना है तो ऑफकोर्स हो तो फिर मुंबई आना उस टाइम पे बनता है, लेकिन वॉइसिंग का काफी काम अब जैसे ऑनलाइन हो सकता है, कई जगह से हो सकता है। तो ये वॉयलेट विंग्स एकेडमी के नाम से, और आपके पूरे इंस्टाग्राम में जो है इसकी डिटेल्स वगैरह होती है, जो भी आपकी वर्कशॉप होती है।
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मेरी कोशिश होती है, मेरा रिकॉर्ड रहा है, अगर मुझे इंस्टा डीएम करेंगे और वाकई वाजबी सवाल रहेगा, ऐसा सवाल जो मैं जवाब दूं, और ऐसी चीजें जो जानना चाहते हैं, तो मैं बेशक मेरा 90% रिकॉर्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ। कुछ चित्र विचित्र सवाल आ गए तो बात अलग है, सर आपने उस पिक्चर में कितने पैसे लिए सर आपने वो पिक्चर कैसे किसके पास से, तो वो लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अलग तरह की इंडस्ट्री है।
बिल्कुल सर।
अभी पैसों की बात निकली तो मैं ये बात भी छेड़ूंगा कि यहाँ कोई रेट कार्ड नहीं है हमारी इंडस्ट्री। तो यहाँ क्या होता है कि आप अपने तजुर्बे, एक्सपीरियंस, अपनी कलाकारी, अपनी एक्सपर्टीज, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके साथ बात करके पैसे तय करके काम कर सकते। तो इसमें तो कोई
आपकी सीनियोरिटी, आपका क्राफ्ट, आपका तजुर्बा, ये सब डिसाइड करता है।
Yes, yes.
बिल्कुल सर। मैं एक और चीज अपने व्यूअर, सब्सक्राइबर्स को, लिसनर्स को बताना चाहूंगा। 2019 साल की बात है सर, उस टाइम पे नवंबर में आए थे दिल्ली में, और मैं उस टाइम पे वॉइसिंग जो है, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो मैं आई वॉज इंटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और उन सब चीजों में था मैं। तो मुझे पता चला कि एक दिन का वर्कशॉप है, मुझे पता चला कि राजेश सर आ रहे हैं, तो मैंने कुछ भी करके मैं सोचा यार आज चलो मैं काम जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं सर से आके मिलूंगा। और सर उसमें मुझे अभी भी याद है, मैं जब अंदर गया था, आपने हल्का सा जैसे युवा दया सोनल कौशल वगैरह, आपने जैसे साउंड इंजीनियर बैठे हुए थे, हल्का सा आपके मुंह से निकला यार कि यार आवाज तो अच्छी है। अब मुझे भी पता सर आवाज अच्छा होना तो एक छोटा सा एक वो है, बट आपके मुंह से वो चीज सुनना मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि यार अब चलो आप इंडिया हिंदुस्तान के इतने दिग्गज डबिंग आर्टिस्ट कह रहे हैं यार करना चाहिए इसमें काम। वो दिन की बात है, मैं नहीं कहूंगा मैंने एकदम अपनी आई क्विट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड वॉइस ओवर फुल टाइम, बट उसके बाद 2019, उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, 2020 से ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन बन गया। सो सर, फाइनली सर, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट, और बहुत ही बढ़िया, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है कि इतने समय बाद ये, मतलब जब से सोच रखा था वो आपका, आप बीच में बिजी थे, मेरा भी ट्रैवलिंग था काफी, बट आज फाइनली एपिसोड हो रहा है, और मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूं सर
नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, आई एम सो सॉरी मैंने आपको काफी इंतजार,
अरे नहीं सर, सब वर्थ है सर, वेट वर्थ है, आपके साथ एपिसोड हो रहा है, तो वो इंतजार जितना लंबा होता है उतनी एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है
क्योंकि क्या होता है कई बार कि हम जो सोचते हैं तभी वो चीजें होती नहीं है, अचानक से प्लान कर लो तो हो जाता है,
आई कैन
क्योंकि
अंडरस्टैंड
सौ
सर।
चीजें हैं वो, ये बकायदा ही वो ये जो स्पेशल इफेक्ट में कैसे, वो एक एक जानवर है, यहाँ से उसका एक हाथ निकला, यहाँ निकला थी, वैसी ये जिंदगी वो है, मतलब ये जीवन ही वो, कि आपको कहाँ से क्या, कौन से काम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा काम निकल जाए, क्या आप कर रहे हैं, आपको ही पता नहीं होता कई
ये
बार,
होता है। और
तो
सर खास
इसीलिए
करके आप जैसे, और मुंबई में डबिंग में फ्रीलांसिंग में, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल जो स्केड्यूल होता है ना। आज आपने प्लान किया हुआ और अचानक फोन आ गया, तो आई कैन कम्प्लीटली कोरिलेट दैट।
जी। और मैं मेरे जैसे थोड़े होते हैं विचित्र इंसान, तो मैं 100 चीजें करता हूँ साथ में, बहुत सारी चीजें मेरी चलती हैं डबिंग के साथ, एकेडमी के साथ, कुछ क्रिएटिविटी के साथ मेरे, और कुछ मेरे कमिटमेंट है मेरे छोटे मोटे दूसरी चीजों के, उसके साथ 100 चीजें
नहीं
तो
बिल्कुल
थोड़ा
सर,
थोड़ा।
अब अपना एक अच्छी चीज़ है डाइवर्सिफाई होना, एक आर्टिस्ट के अलावा इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं साथ में। बिल्कुल सही है सर। सो फाइनली थैंक्स अ लॉट सर, और हम जल्द इस तरह, ये ऐसी चर्चा है जो मतलब होता है ना, चलती रहे बस। आज आपका, आपके साथ अभी लास्ट एपिसोड मेरा संकेत सर के साथ था, सौभाग्य आज मेरा आपके साथ इस तरह से मुखातिर हुआ, आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे
वाह
हैं,
वाह वाह वाह,
बहुत
नहीं
ही
आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके जरिए वॉइस इंडस्ट्री और यहाँ के जो कलाकार हैं लोगों तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी बात है, और मैं तो चाहता ही हूँ कि इस क्राफ्ट को कोने कोने तक ले जाऊं, क्योंकि मुझे 24 साल हो गए, और डबिंग करते करते अगर 99-2000 की बात करूँ
हाँ 2 दशक से ये ज्यादा हो गया।
तो ये अभी अगले साल 25 साल हो जाएंगे सिल्वर जुबली, तो मेरी यही दिली तमन्ना है, पागलपन है कि इस क्राफ्ट को मैं जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाऊं, कई लोग ये जानते नहीं, आज भी अंडररेटेड क्राफ्ट है, तो इसलिए कोशिश यही है कि ये पे बैक टाइम है भाई मेरा, इस क्राफ्ट ने, इस इंडस्ट्री ने काफी कुछ दिया है मेरा मुझे, तो सब अपने अपने सिरे से करते होंगे, मैं अपने सिरे से कर रहा हूँ कुछ अपनी इच्छा से, तो ये पे बैक टाइम है कि इस क्राफ्ट को लोगों तक, इसलिए
बिल्कुल सर,
मैं ये हर एक जगह मैंने कहा है, अपने टेड टॉक में, दोनों टेड टॉक में, अपने जोश टॉक में, या जहां भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर गया हूँ जहां लोगों तक बात पहुंच, तो यही कोशिश की कि लोग इस क्राफ्ट को जाने, क्योंकि ये हर आम इंसान की जिंदगी का, हर रोज का, रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इसके
पता नहीं,
पीछे
अवेयरनेस
होता
नहीं
है
इतनी।
कौन, कौन है कलाकार है, कि क्या होता है।
बिल्कुल सर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, सिल्वर जुबली आपने कहा 25 साल, तो सर आपकी पार्टी ड्यू है इसमें, मुंबई आके मैं पक्का लूंगा जिसके
यस भाई
लिए।
यस, नहीं भाई
ओके ओके
मलिए
सर,
चलिए मलिए, मारू अहमदाबाद
चौक्का
आवनु
सर,
थशे तो मळीशु,
चौक्का सर, तमने आवानू जो अहियाँ जारे पण तमारो अहमदाबाद आवानू थाय
यस
अहियाँ।
यस
बिल्कुल
पक्को,
सर, बिल्कुल।
यस।